यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जमुनातीरावनचारी जमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रशत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज की कथा हिंदी में करेंगे। तो हम श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते से जो चर्चा चालू ही है उसमें हमने अभी तक पहले 4 अध्याय के ऊपर चर्चा की है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि कैसे अर्जुन जो युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में मौजूद हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो उनको संशय है कि मेरे को युद्ध करना चाहिए, मेरे को क्या अपने बुजुर्गों को, अपने गुरुओं को, उनके प्रति प्रतिशोध करना चाहिए या उनको तीर चलाने चाहिए। तो उस भाव में वो संशय में पड़ते हैं। तो उसके अंतर्गत उनके कुछ संशय व्यक्त की गई हैं पहले अध्याय में। फिर दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर भी उनको लगता है, निमाइला प्रभु ने काफ़ी विस्तार से समझाया कि ज्ञान और कर्म दोनों कैसे एक साथ कैसे चलेंगे। तो उसके अंतर्गत तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण फिर से बताते हैं, और चौथे अध्याय में फिर ज्ञान के ऊपर चर्चा की थी कि कैसे ज्ञान अगर है तो फिर व्यक्ति निष्पाप हो सकता है। तो लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर ज्ञान है तो मुझे युद्ध करने को क्यों बोल रहे हैं? ज्ञान है तो मतलब हमको संन्यास लेना चाहिए, मतलब कर्म से विरक्त होना चाहिए। तो फिर इसके अंतर्गत ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें कर्म करो या युद्ध करो? तो चौथे अध्याय का जो श्लोक नंबर योग संन्यस्त कर्मानं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो रूपा जी लिख रहे हैं कि जो भक्ति के अनुसार कार्य करेगा उसको जो कर्म फल है उसको त्यागना बहुत आसान है, उसके क्योंकि उसको ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसके जो संशय हैं वो मिट जाएंगे। तो और वो अपने कर्म से बंधा नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म इस जगत में बांध देता है, तो वो कर्म से बंधा नहीं जाएगा। तो इसके लिए अभी अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान है आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक प्रगति का, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये युद्ध छोड़ के संन्यास लेना चाहिए, कर्म संन्यास लेना चाहिए। लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं नहीं, अब तुम तीव्रता से युद्ध करो। तो उनको फिर से संशय आ रहे हैं, तो वो फिर संशय 5वें अध्याय में पहले श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशयसि यच्छ्रेया एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो इधर बोल रहे हैं अर्जुन बोले कि आपने पहले तो मुझे बोला कि कर्म संन्यास ले लो, फिर आप फिर से बोल रहे हैं कि लड़ाई करो भक्ति के मार्ग से मेरे निर्देश अनुसार। तो मेरे को बुद्धि में भ्रम हो रहा है कि क्या करूं, ये करूं कि ये करूं, इसमें से कौन सा आप मेरे को असली में काम या कौन सा कार्य करने को बोल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। तो जैसे हमने चर्चा की थी, सुनी है जैसी चर्चा, कि अर्जुन सोच रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योगा अलग अलग चीज है। जैसे निमाइला प्रभु भी बता रहे थे दूसरे अध्याय में कि एक ही एक्चुअली मार्ग एक ही है, क्योंकि लक्ष्य एक है, लेकिन उसमें अलग अलग पग हो सकते हैं। कि कर्म योगा करके हम, जैसे अब भगवान इसमें उत्तर देंगे कि कर्म योगा करके आप अपने हृदय में जो कल्मश है उसको स्वच्छ करेंगे, अपने हृदय को स्वच्छ करेंगे, उसको हटाएंगे, फिर चाहे आप सन्यासी मार्ग में रहें, कर्म संन्यास लें कि आप कर्म करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही मार्ग है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे ये जो संशय है इसको दूर कीजिए और इन दोनों को मैं कैसे, तो साधका के लिए अगर हम समझेंगे तो साधका ये सोच सकता है इन दोनों को मैं कैसे जोड़ के कार्य करूं, संन्यास भी लूं पर साथ साथ कार्य में भी शील रहूं, कार्यशील भी रहूं। तो उसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि क्या है मेरे लिए सही वो बताइए। तो इसमें भगवान कृष्ण इस अध्याय का, जैसे प्रभुपाद जी बोल इसका टाइटल दिए हैं, कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कर्म करते हुए भी हम कैसे मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं या भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ज्ञान के अगर आप ध्येय को लेकर कार्य करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए कोई कार्य रह ही नहीं गया है। और चौथे अध्याय में बोल रहे हैं कि सारे जो यज्ञ हैं वो भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में सहायक हैं। तो इसके अंतर्गत लेकिन फिर से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आखिरी में कृष्ण भगवान बोले चौथे अध्याय के कि तुम अभी संन्यास लो बट फिर भी कार्यशील रहो, तो उनको संशय आ रहा है। तो दूसरे जो श्लोक है उससे भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। तो भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय करो भो, कि अगर आप संन्यास लेते हैं, कर्म संन्यास लेते हैं या मेरे बताए हुए मार्ग से कार्यशील रहते हैं तो वो दोनों से आपको मुक्ति मिल सकती है। निःश्रेय करो भो कर्म योगा विशिष्यते। पर मैं किसको आपके लिए रिकमेंड करूंगा या बताऊंगा आप क्या करना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि कर्म योगा करते हुए भक्ति के माध्यम से वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो जो कर्म संन्यास है वो समझ सकते हैं, इधर बोल रहे हैं कर्म संन्यास अगर लेंगे, अगर हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है और कर्म संन्यास लेंगे तो हम फिर से पद भ्रष्ट हो सकते हैं, फिर से इंद्र तृप्ति में लग सकते हैं। क्यों? अगर जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं है और हम कर्म संन्यास लेते हैं तो क्या होगा, हम पद भ्रष्ट होकर फिर से भौतिक कार्यों में लग सकते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि आप कार्य करते रहिए लेकिन सब कुछ भगवान को अर्पण करके कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कर्म योगा विशिष्यते, कर्म योगा उससे ज्यादा अच्छा है, ऐसा मैं बोलता हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवतम से बोल रहे हैं, जो ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यत इंद्रिया प्रीतया आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असम अपि क्लेशद आशदेह। तो कैसे इस जगत में, तीन श्लोक को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे इस जगत में लोग भौतिक कार्यकलापों में लगे हैं, ऋषभदेव जी बोल रहे हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने पागल हैं प्रमत्त, और न साधु मन्ने यत आत्मनोयम, और उनको पता नहीं कि उनके भलाई के लिए क्या है। तो ये इंद्र तृप्ति के अंतर्गत कार्य करने से आदमी पागल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, और उसमें जैसे बोलते हैं खुजला खुजाने के जैसा है, अगर हम खुजलाएंगे तो उससे खुजली कम नहीं होगी और खुजलाना पड़ेगा, और वो फिर अंत में खून निकलने का कारण, मतलब उससे बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी, तो उसका वो कारण बनेगा। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में एक लाइन लिखते हैं कि मन भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ है और वो अंधकार में है, तमा में है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चाहिए, साधकों को चाहिए कि वो प्रयास करते रहे भगवान की प्रेम भक्ति पाने का। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इस जगत में ऐसा नहीं है कि अगर हम ठान लेंगे या एक दृढ़ निश्चय करेंगे कि मेरे को भक्ति में अग्रसर होना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। तब भी समस्याएं रहेंगी, हमारे को आगे बढ़ने में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन जैसे नदी है, तो नदी में अगर आपको तैरना है और नदी का बहाव एक तरफ है, आपको दूसरी तरफ तैरना है, तो वो आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो प्रयास करते रहेंगे तो एटलीस्ट हम दूसरी दिशा में नहीं बहते चले जाएंगे, हम उस जगह जहाँ पे हैं वहाँ तो बने रहेंगे। तो उस प्रकार से प्रयास करते रहना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्ञान से केवल हम मुक्ति नहीं पा सकते, पर वो ज्ञान के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान होने से कोई मुक्ति नहीं पा सकता, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ज्ञान के अंतर्गत हमें कार्य करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ सुनना बोलना काफी नहीं है, हमें वो सुनना और बोलने के ऊपर अपने जीवन में लागू भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो सफलता की ओर बढ़ेगा। फिर आगे अगर चलेंगे तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ज्ञेया स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभाहो सुखम बंधन्ति प्रमुच्यते। कि इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कैसे कौन असली में सन्यासी है, या जिसने कर्म संन्यास लिया है। ज्ञेया च नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है ना कोई कांक्षा रखता है, आकांक्षा रखता है, और निर्द्वंद्वो ही महाभाव, वो निर्द्वंद है, जो ये जगत में द्वंद है हमेशा, ये सही है ये गलत है, ये मेरा दोस्त है ये मेरा शत्रु है, निर्द्वंद्वो उसके ऊपर उठता है। और ही महाबाहो, तो बोल रहे हैं हे महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो वो असली में सुख प्राप्त कर सकते हैं, और बंध जो बंधन है उसको प्रमुच्यते, उसको तोड़ सकता है। तो ये लक्षण दिए हैं यहाँ पे कि कौन असली में सन्यासी है या कौन अग्रसर है आध्यात्मिक प्रगति में। पहली चीज बोली है कि न द्वेष्टि न कांक्षति, वो इस जगत के प्रति ना बहुत ज्यादा द्वेष करता है ना बहुत इच्छाएं रखता है। निर्द्वंद्व, जो इस जगत में, जैसे प्रहलाद महाराज भी जब शंड और अमर का उनके गुरु के जो भेजे निर्धारित किए हुए जो उनके टीचर्स थे, वो उनको बोल रहे हैं कि ये आपके मित्र हैं ये आपके शत्रु हैं, बट प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये मित्र है शत्रु है। तो ये उनको लग रहा था कि सब तो जीव हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो ये मित्रता और शत्रुता कहाँ से आ गई। तो वो द्वंद का भाग है, और फिर उससे सुख मिलेगा, उससे हम बंधन से प्रमुच्यते, बंधन को तोड़ पाएंगे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कर्म, सिर्फ कार्य को छोड़ देना, कार्य नहीं करना, इससे कोई ये नहीं है कि आपने बहुत प्रगति कर ली। आप कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे मुक्ति का मार्ग अपना लिया, आप कार्यशील हैं लेकिन आप कुछ द्वेष नहीं कर रहे या आप कुछ इच्छाएं नहीं रख रहे, और ऐसे करते हुए कार्य से आप प्रगति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य आपको बांधेगा नहीं, वो कार्य आपको मुक्त करेगा। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक जैसे हमने सुना है धनुर्दास की कहानी, तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे धनुर्दास, और वो गृहस्थ आश्रम में थे। और एक बारी तो रामानुजाचार्य के जो ब्रह्मचारी शिष्य थे उनको लगता था कि ये रामानुजाचार्य इतना धनुर्दास के प्रति क्यों प्रेम दिखाते हैं, हम तो इतने यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, एक बारी वो समझ लेते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है शिष्यों की, तो उनको बोलते हैं कि हमें कुछ लक्ष्मी की जरूरत है, तो आप क्या कीजिए धनुर्दास के घर पे जाइए, और रात में जब उनकी जो धर्मपत्नी है वो सो रही है, तो आप उनके गहने ले लीजिए। तो वो जाते हैं, और तो गहने उनके पहने हुए गहने निकाल रहे होते हैं रात में, तो तो एक तरफ के निकालते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ मुंह करती हैं तो डर जाते हैं, अरे जग गई, वो भाग जाते हैं। तो धनुर्दास जब आते हैं उनको बताते हैं तो बोलते हैं अरे तुमने ऐसा क्यों किया, उनको सारे गहने देने चाहिए थे। तो बाद में वो जाके उनको देते हैं। तो रामानुजाचार्य ये कहानी से बता रहे हैं कि कर्म संन्यास या प्रगति का भाव ये है कि द्वेष नहीं होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप संन्यास आश्रम में हैं कि गृहस्थ आश्रम में हैं, कार्यशील रहते हुए भी ये भाव रखेंगे कि द्वेष नहीं है, कांक्षा नहीं है, द्वंद द्वंद में नहीं फंस रहे हैं, तो उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। रूपा जी बोलते हैं आगे कि कैसे इस जगत में जो भक्त है उसने इतनी प्रगति की है, आखिरी लाइन लिखते हैं कि उसको द्वंद नहीं रहता है मन में। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण तरह विश्वास है कि मैं जो भी कर रहा हूं और इस जगत में जो भी व्याप्त है वो कृष्ण का ही है, कृष्ण द्वारा ही आया है। तो उसको द्वंद ही नहीं रहता है क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण संकल्प है कि ये कृष्ण का है, ये कृष्ण द्वारा उत्पन्न उत्पत्त है। तो उसको कभी भी द्वंद में नहीं फंसता है। तो प्रभुपाद जी एक भक्ति योगी के लिए एक साधारण मार्ग बता रहे हैं कि आप द्वंद से अगर निकलना चाहते हैं तो सबसे आसान मार्ग है ये समझना कि सब कुछ कृष्ण से ही आया है, और उस ज्ञान के अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आप द्वंद से हमेशा मुक्त रहेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि चौथे और पांचवें में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म और संन्यास तो एक बराबर ही है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, संख्या योगा पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि आस्तित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कि जो लोग को बुद्धि नहीं है वही बोलते हैं कि कर्म योगा और इस जगत में सांख्या मतलब सांख्या योगा ज्ञान योगा के अंतर्गत जगत में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं, वैसे जो मार्ग पर जाते हैं वो बोलते हैं कि ये दोनों अलग मार्ग हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, एकम अपि आस्तित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या बोलते हैं कि इनका लक्ष्य तो एक ही है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हो गए, तो एक ही है ये, ऐसा बता रहे हैं। तो प्रोपा जी इसको समझाने के लिए तात्पर्य में एक उपमा देते हैं कि एक पता कर रहे हैं कि जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का जड़ किधर है, एक मार्ग वो पता कर रहा है, दूसरा मार्ग जड़ में पानी दे रहा है। तो बात तो एक ही है, जड़ के प्रति ही अग्रसर हो रहे हैं, जड़ के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? क्योंकि जैसे ये बोलते हैं ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, सो क्या वो सही है? कई बार हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं हाँ कुछ भी करो हम भगवान के प्रति ही तो अग्रसर हो रहे हैं, ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल। उसमें अंतर ये है कि दो चीज समझ सकते हैं, ऑल पाथ मतलब क्या हम अध्यात्म इच्छा क्या है हमारी उसके ऊपर है कि हम आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो पाथ गोल की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जैसे हिमालय है, हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, तो कंचनजंगा या एवरेस्ट या अशोका ऐसे अलग अलग चोटियां हैं, तो सब लोग हिमालय की तरफ ही अग्रसर हैं। लेकिन कोई मार्ग से आप अगर एक मार्ग चुनेंगे तो आप कंचनजंगा पहुंच जाएंगे, एक मार्ग चुनेंगे तो एवरेस्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट है, तो उसमें आपको पहुंचना है तो आपको एक मार्ग पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा मार्ग लेंगे तो आप प्रगति कर रहे हैं हिमालय की तरफ ही, लेकिन आप दूसरी चोटी चले जाएंगे। तो इसके अंतर्गत अलग अलग मार्ग हैं जो एक ही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई ब्रह्मवादी बन जाएगा, कोई परमात्मा की समझ पे आ जाएगा, कोई भगवान की समझ पे आ जाएगा। है तीनों भगवान के ही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देते, भगवान के ही समझने के अलग अलग तरीके, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है वो अलग अलग हो सकता है ऐसा। फिर पांचवें श्लोक में बोल रहे हैं यत यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम यत योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो जो व्यक्ति ये देखता है पश्यति स पश्यति कि जो मार्ग हमको ये सांख्य योग से मिलेगा और जो कर्म योग या भक्ति योग से मिलेगा वो एक ही है, तो वो सही समझ रहा है, ऐसा यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन को जो संशय है कि अर्जुन क्या चाहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है कि मैं संन्यास ले लूं क्योंकि मेरे को ये जो कार्य है ये बहुत ही गंभीर लग रहा है। इसमें कैसे अपने गुरु के प्रति शस्त्र उठाऊं, कैसे मेरे पितामह के अगेंस्ट शस्त्र उठाऊं, तो उनको लग रहा है कि मैं संन्यास ले लेता हूं। और उसके लिए वो कारण दे रहे हैं कि ये अच्छा, ये ज्यादा ऊंचा मार्ग है। तो भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ऊंचा है ये नीचा है। अगर आप ये भाव से कार्य करेंगे कि मेरे को कृष्ण को पहुंचना है या भगवान को प्रसन्न करना है, तो दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। तो वो क्लैरिटी पहले दे रहे हैं कि ये मत बोलो कि ये संन्यास, वो सोच रहे संन्यास हायर है और ये कर्म योगा लोअर है, निचला है और ये ऊपर है। तो ऐसा उसका जो द्वंद है वो हटा रहे हैं भगवान कृष्ण कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, तो वो दोनों एक समान ही है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये सीढ़ी के समान है, तो कर्म योग से और निष्काम कर्म योग से अगर हम कार्य करेंगे तो जो मल है हमारे हृदय में, जो कल्मश है, वो जब धीरे 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 हट जाएंगे या स्वच्छ हो जाएंगे, तब जाके व्यक्ति कर्म योगा या ज्ञान योगा को अपना सकता है। लेकिन अगर वो निष्काम कर्म योगा भी करता रहे और अर्पण करता रहे भगवान को कार्य, तो उससे भी उसको सफलता मिल जाएगी। और उसका दे रहे हैं समझ कि वो थोड़ा सेफ पाथ है, मतलब उसमें अगर गिरने के चांसेस कम है, लेकिन संन्यास मार्ग से अगर फिर से कुछ आपके कल्मश अगर थोड़े से भी रह जाएंगे तो इच्छा जागृत हो जाएगी और आप फिर से भौतिक कार्यकलाप में लग जाएंगे। तो इसके लिए ये मार्ग आपके लिए अच्छा है, ऐसा यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम अगर भौतिक डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड अटैचमेंट टू कृष्णा आर वन एंड द सेम, वन हु कैन सी दिस सीज थिंग्स एज दे आर। एक मार्ग में हम ज्ञान मार्ग में वो ये भौतिक वस्तु है, ये भौतिक वस्तु है, नेति 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 कर रहे हैं। दूसरे मार्ग में हम भगवान को पकड़ रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं व्यतिरेक और अन्वय, मतलब क्या एक डायरेक्ट मार्ग है एक इनडायरेक्ट मार्ग है, पर लक्ष्य एक ही है, तो वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर कृष्ण भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं कि संन्यासा तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः, कि अगर आप संन्यास कर्म संन्यास लेंगे तो दुख का मार्ग है बहुत। योगा युक्ता मुनिर ब्रह्मा न चिरा अधिगच्छति, कि सिर्फ आप बोलेंगे कि मैं कर्म संन्यास ले लेता हूँ तो बहुत दुख बहुत ही कठिनाई आएगी और अयोगतः, अगर आप अयोगतः नहीं करेंगे, अगर कर्म योगा निष्काम कर्म योगा नहीं करेंगे तो योगा युक्तिर मनो ब्रह्मा च चिर अधिगच्छति। तो बड़ा ही तपस्या का मार्ग है, इंद्रियां विचलित हो सकती हैं, तो इसके लिए आप कर्म योगा के माध्यम से, निष्काम कर्म योग के माध्यम से मेरे को बहुत ही आसानी से पा सकते हो। तो जैसे उदाहरण दिया जाए तो कुछ चीज हमें पसंद है तो ज्ञानी क्या बोलेंगे, ज्ञानी मार्ग पे जो व्यक्ति है वो बोलेंगे नहीं, ये ना भौतिक वस्तु है, इसको हमें नहीं लेने का है, दूर रहो। तो मन में बहुत कठिनाई होगी, मन में बहुत तपस्या होगी। लेकिन जो कर्म योगी भक्ति योगी है वो बोलेगा कि नहीं, भगवान से ही आया है, उसको हम भगवान को अर्पण करके स्वीकार सकते हैं। हम उसके लिए इतना प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मिल रहा है तो उसको हम भगवान को अर्पण करके उसको स्वीकार सकते हैं। तो कौन सा मार्ग, दोनों मार्ग से हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो कौन सा मार्ग आसान है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग है, ये जो भक्ति योगा का मार्ग है वो आसान है। तो इधर ऐसा बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वैष्णव सन्यासी और मायावाद सन्यासी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तात्पर्य में, कि कई बारी मायावादी सन्यासी बहुत वेदांत सूत्र के ऊपर अलग अलग चर्चा करते हैं, लेकिन वो इतने कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं, वे फिर भागवतम खोलते हैं कि कुछ रस मिले, लेकिन वो फिर भागवतम से भी उनकी प्रगति नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो है संन्यास का मार्ग, या मैं भगवान बन जाऊं। तो लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है उसको बहुत आनंद आता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान की लीला गुण से चर्चा करने में ऐसा। तो यहाँ तक पहला जो इस जो अध्याय में जो चर्चा है वो समाप्त होती है। तो फिर भगवान कृष्ण 7 से 16 श्लोक में बताते हैं कि कैसे निष्काम कर्म योगा बंधन से मुक्त करेगा। तो 7वां श्लोक बोलते हैं, योगा युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो बोल रहे हैं कि क्या है योगा युक्त मार्ग, या उसके लक्षण क्या हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यकलापों में फंसता नहीं है, उसका लक्षण दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि योगा युक्त, जो योगा युक्त है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त है वो योगा युक्त है, योग से कार्य कर रहा है, योग का अंतर्गत है, भगवान से जुड़ के कार्य कर रहा है, योग युक्त। विशुद्ध आत्मा, वो विशुद्ध आत्मा है, क्यों, वो बहुत ही स्वच्छ हो गया है। तो जो व्यक्ति स्वच्छ हो गया है उसको क्या होता है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, क्योंकि उसमें कुछ कल्मश नहीं है, कुछ इच्छाएं नहीं है, तो सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, तो सब व्यक्ति उसको प्रेम करते हैं और वो सब व्यक्ति से प्रेम करता है। विजित आत्मा जितेंद्रिया, और उसने विजित आत्मा है, अपने इंद्रियों पे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रखा है या संयम कर रखा है, जितेंद्रिया। और फिर क्या बोल रहे हैं, कुर्वन अपेन लिप्यति, और वो बनता नहीं है, वो कभी लिप्यते नहीं होता है। तो इसमें बता रहे हैं कैसे, कि जैसे हम साधना भक्ति का अगर लक्षण देखेंगे तो जगत प्रीणनम करके एक लक्षण है, भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है जगत प्रीणनम। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति से हर व्यक्ति उसको देखते ही या उसके साथ संबंध जोड़ना चाहता है। जैसे गोस्वामियों के बारे में क्या बोला है, कि धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत सरो पूजितो। तो चाहे धीर पुरुष हैं कि अधीर पुरुष हैं, वो सब उनसे उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, प्रेम का संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों में जयनंद प्रभु का अगर हम जीवनी देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही दिखने में साधारण भक्त थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रभुपाद जी के लिए और जगन्नाथ जी के लिए काफी रथ यात्रा का सेवा किया। लेकिन वो जिस भी व्यक्ति से मिलते थे तो लोग बड़े प्रसन्नचित रहते थे उनको मिलके, और सोचते थे कब आएंगे वो फिर से मिलने के लिए। और बोला जाता है जब वो चले गए, उन्होंने काफी जल्दी देह त्याग दिया, तो लोग पूछते थे, अरे वो किधर हैं, आपके जो भक्त आते थे इधर हमसे प्रेम से बात करते थे, तो बड़े ही आनंदित रहते थे उनसे मिलने के लिए, उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए। तो ये एक विशुद्ध आत्मा, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जो भगवान से जुड़ा है, योग युक्त है और विशुद्ध हो गया है, उसके अंदर जो भी कल्मश है वो सब स्वच्छ हो गए हैं, उसका ऐसे कार्यकलाप रहते हैं कि वो सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा, वो सबसे प्रेम करता है और सब लोग उससे प्रेम करते हैं। और और दूसरी बात बोल रहे हैं विजित आत्मा और जितेंद्रिया कि कैसे ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसके हृदय स्वच्छ हो गया है, तो उसको इंद्रियों के ऊपर संयम करना, अपनी इच्छाओं के ऊपर संयम करना, मन के ऊपर संयम करना, वो बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ द्वंद्व ही नहीं है, कुछ कलमश ही नहीं है जो उसको अग्रसर करते हैं कार्य करने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे मैं अगर युद्ध करूँगा तो ये तो मेरे बुजुर्गों का, मेरे गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नहीं, अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान है कि सब जीव आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जब वो युद्ध करेंगे भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार, तो भक्ति का मार्ग है और उनको उससे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको सही ज्ञान है, उनकी जो चेतना है वे विशुद्ध आत्मा है। तो उसके अंतर्गत क्यों प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही वॉज सिंपली कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। सच अ पर्सन इज नेवर एंटेंगल्ड इन रिएक्शंस ऑफ वर्क। तो जो व्यक्ति भगवान के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, और वो कभी बंधेगा नहीं, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान ही सब चीज के नियंत्रक हैं। ऐसा तो 8वें और 9वें श्लोक में बोल रहे हैं कि आप कार्य करते भी हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं करते। तो कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में है, वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, लेकिन ये कार्य करते हुए भी वो जानता है कि ये इंद्रियां, इंद्रिया और इंद्रिय वस्तु के साथ उनका संबंध हो रहा है, पर वो उससे अलग है, वो उसमें जुड़ा नहीं है, ऐसा उसका भाव रहता है। तो क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध आत्मा है, उसको समझ गया है कि मैं इस भौतिक जगत से विपरीत हूँ, अलग नहीं हूँ, मेरा जो लक्ष्य है या जो मेरा अस्तित्व है वो इससे अलग है। तो जो भक्त है वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ भगवान की सेवा करता है। तो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया के जो इधर लक्षण दिए हैं, वो करते हुए भी वो उसमें बंधता नहीं है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे 10वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति भगवान या परम शक्ति के लिए कार्य करता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मा पत्रम इवाम्भसा। तो जो व्यक्ति ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो ब्रह्म पे या भगवान के ऊपर अपने कर्मों को अर्पण करता है, संगम त्यक्ता करोतिया, मतलब कर्म कर रहा है, संग कर रहा है कर्मों के साथ, कार्यशील है, वो करते हुए भी अगर वो भगवान को जो उसके जो उसके लक्ष्य है उसके तरफ जो भी उसको मिलता है वो भगवान को अर्पण करता है, तो लिप्यते न स पापेन, वो बनता नहीं है पाप से। क्यों? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे कि पद्म कमल का फूल है, वो इवाम भसा, वो पानी में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी, वो उससे पद्म पत्र, जो जो लोटस लीव जिसे बोलते हैं, जो कमल का जो पत्ता है उसमें अगर पानी की बूंद भी गिरे लेकिन वो पानी से व्याप्त नहीं होता, वो पानी तुरंत गिर जाता है। तो वैसा इस जो निष्काम कर्मी योगी है या जो भक्त योगी है उसका लक्षण है ये। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ मेरी तरफ शरण लेनी है। तो अगर आप भगवान की शरण लेंगे तो जो भी वस्तु है हम भगवान की सेवा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट सरेंडरिंग द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो शब्द यूज किया गया है आधाय, अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो फिर हम लिप्यते नहीं होंगे, हम पाप से लिप्यते नहीं होंगे ऐसा। तो फिर अगर कोई व्यक्ति पूछेगा कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, इस भौतिक जगत से परे हूँ और मैं तो विरक्त हूँ, तो क्यों फिर मुझे कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, सही भाव से कार्य करेंगे, सही ज्ञान से कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जीवन में स्वच्छता आएगी, हमारे जो कल्मश हैं उसको स्वच्छ होंगे। तो वो 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, काये न मनसा बुद्ध्या केवल केवलेर इंद्रियेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये तो काये ना, ये शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया हमारी बुद्धि से, केवलेर इंद्रियारपि, और इंद्रियों से अगर कोई कार्यशील रहेगा तो उससे क्या होगा, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मा शुद्धये, तो उससे वो शुद्ध होने का उसका पर्पस है कि उससे वो शुद्ध होगा, तो इसलिए उसको फिर भी कार्यशील रहना चाहिए। वो जानता है कि मैं भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं भौतिक कार्यकलापों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों कार्यशील रहना चाहिए, क्योंकि उससे उसका जीवन जो है वो कल्मश से रहित रहेगा, ऐसा 11वें श्लोक में बोल रहे हैं। फिर 12वें श्लोक में बोल रहे हैं कि उसका फल क्या है, कर्मयोगी का, निष्काम कर्मयोगी का फल क्या है। तो युक्त कर्मा फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, अयुक्त काम कारेण फल सक्तो निबध्यते। तो जो निष्काम कर्मयोगी है उसको क्या प्राप्त होगा, शांतिम आपनोति नैष्ठिकिम, तो उसको अनएडल्ट्रेटेड पीस, मतलब नैष्ठिकिम शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे युक्त कर्मा फलम त्यक्ता, अपने जो कार्य हैं उनका जो उसका देह है वो भगवान को अर्पण करता है। लेकिन अयुक्त काम कारेण, कोई अयुक्त है जो भगवान से जोड़ता नहीं है अपने कार्यों को, वो काम कार्य ना, अपनी काम वासना के अंतर्गत कार्य करता है, फल सक्तो निबद्धते, वो फल से बांधा जाता है। तो यहाँ पे निष्काम कर्मयोगा का क्या समझ है, किस तरह से निष्काम कर्मयोगी कार्य करता है, उसका कृष्ण भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो युक्त कर्म फलम, युक्त मतलब भगवान से जोड़ता है, अयुक्त काम कार्य ना, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तो उसके बीच में अंतर बताया है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 24 गुरुओं का के बारे में बताया है, उसमें से एक गुरु है हॉक, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चील, नहीं चील बोलते हैं। तो चील जो है वो तो उसका एक उदाहरण दिया है कि वो कुछ मांस लेके जा रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत फिर और चील आके आक्रमण कर रहे होते हैं, पक्षी आके, तो उसको लगता है यार मेरे पीछे क्यों पड़े, ये बहुत प्रयास करता है भागने का, बट वो छोड़ते ही नहीं है। तो उसको फिर एकदम से लगता है ये मेरे मांस के पीछे है, तो वो मांस को छोड़ देता है। तो जैसे ही छोड़ता है तो वो सब अपने छोड़ के चले जाते हैं उसको। तो उसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि कर्म बंधन में हम क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो जैसे चील है वो मांस को पकड़े रखा है, वो सोच रहा है कि इसको से मैं इंजॉय करूंगा, इससे मैं आनंद लूंगा, लेकिन उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफें आती हैं, उसको बहुत कर्म फल आता है। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ तो फिर मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कैसे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, उसका यहाँ पे कृष्ण भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। फिर 13 से 16 जो श्लोक हैं उसमें बता रहे हैं कि तीन कौन, जैसे हम कुछ कार्य करते हैं तो असली में कौन कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा का क्या कार्य में उसका क्या योगदान है। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यासात सुखम वसी नव द्वारे पुरा देही नेव कुर्वन् न कारयन्। जो जीव है वो नवद्वार के जो शहर में रह रहा है, क्योंकि ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसमें नवद्वार है, मुख हो गया, आंख हो गई, तो ऐसे करके 9 द्वार हैं, तो इसमें रह रहा है। तो वो बोल रहे हैं नेव कुर्वन न कारयम, तो वो ना तो कुछ कार्य करता है नहीं तो कुछ कार्य में लगता है। तो इधर बता रहे हैं आचार्य लोग कि जीव का क्या गतिविधि है, वो सिर्फ इच्छा करता है, उसके हाथ में क्या है, इच्छा करना। तो वो जब इच्छा करता है तो 14 श्लोक में बता रहे हैं कि वो इच्छा करता है तो उसकी पूर्ति कौन करता है, उसकी पूर्ति ये प्रकृति करती है। तो प्रकृति के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं हैं कि आप इच्छा करो और वो फिर कार्यशील होती है, तो उसके हिसाब से फिर कार्य होता है। तो यहाँ पे 14 श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि प्रकृति कार्यशील रहती है। और फिर 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का क्या रोल है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु, अज्ञान एनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो ना तो जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो किसी के पाप को लेते हैं या किसी के पुण्य को लेते हैं, लेकिन अपने ही अंधकार से, अपने ही भ्रम से, अपने ही तमस से लोग सोचते हैं कि भगवान हमको करा रहे हैं या भगवान ने हमको इसमें पाप में फंस दिया, क्योंकि वो अपने ही आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण समझ नहीं पाते। तो फिर इसको समझने के लिए बताया है कि जीव इच्छा करता है, प्रकृति उसको कार्यशील में लाता है, और लेकिन वो तभी कार्यशील में लाता है जब परमात्मा या भगवान उसकी स्वीकृति देते हैं। तो तीन तीन आ, आ, तीन लोगों का या तीन एजेंसीज का यहाँ पे कार्य में संबंध है। तो जीव इच्छा करता है, भगवान उसकी स्वीकृति देते हैं, और जो जब उनकी स्वीकृति मिलती है भगवान की, तो जो प्रकृति है उसको कार्य में लाते हैं। तो जीव सिर्फ इच्छा कर सकता है। तो इसके लिए बोलते हैं ना कि भावग्रही जनार्दना, कि सबसे हम क्या कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रभावित नहीं हो रहे, बट क्या मानसिक स्थिति है हमारी, क्या इच्छा है, क्योंकि वो भाव के कारण ही भगवान हमसे बन जाते हैं, हम कह रहे निकट आ जाते हैं। तो इच्छा ही जीव के अंतर्गत है, उसको ही उसको बदलना है। तो ये जो गीता का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन, हरिनाम का में भाग लेना, उसका पर्पस या उसका लक्ष्य यही है कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको बदलना, हमारी इच्छाएं हैं उसको बदलना, तो उसके अंतर्गत कार्य करना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान 16वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जो अभी भगवान कृष्ण दिए हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जीवन में सुख आता है, हमारे जीवन में एक अंधकार से हम उजाले में जाते हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येष नश्येति आत्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत् परम। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ज्ञान, अगर सही ज्ञान है, वो अंधकार से हमको उजाले में ला सकता है। जैसे सूर्य जहाँ पे उगता है वो अंधकार को दूर कर देता है, उसमें उजाला आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ज्ञान का परिकाष्ठा क्या है, सीमा क्या है, परफेक्ट नॉलेज क्या है, जब हम ये समझें कि भगवान की शरण लेना लेनी चाहिए, या हम भगवान की शरण लें तो ज्ञान की परिकाष्ठा है। परफेक्ट नॉलेज प्रभुपाद सेज इज अचीव व्हेन वन सरेंडर्स ऑन टू कृष्णा। जब जीव भगवान की शरण लेता है तभी वो ज्ञान की परिकाष्ठा है, या भगवान ज्ञान की सीमा है। तो ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर जो आखिरी जो श्लोक हैं 17 से 29 तक, उसमें हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं अगर हम जो परम सत्य है, भगवान है, उसके प्रति हम अपने को अग्रसर करेंगे, अपने को ढालेंगे उनकी सेवा की तरफ। तो अगर हम भगवान की तरफ अपने को ढालेंगे तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। पहला श्लोक बोलता है 17वां, तद्बुद्धयस्तद आत्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो इधर बोल रहे हैं जिसकी बुद्धि, मन और श्रद्धा किसमें शरण लेती है, भगवान में जब शरण लेती है, तद बुद्धया तद आत्मना तद निष्ठा तद परायणा गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम, तो उससे क्या होता है, ज्ञान निर्धूत कल्मषई, तो जितने भी कल्मष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और वो किस तरफ जाते हैं, अपुनर आवृत्तिम। अपुनर मतलब पुनर्जन्म, अपुनर मतलब जो जन्म मृत्यु के परे है, निवृत्ति, तो उस तरफ वो अग्रसर होता है, तो लिबरेशन में या मुक्ति की तरफ वो अग्रसर होता है। तो ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की तरफ शरण लेंगे, अपने मन, अपने इंद्रियां, अपने बुद्धि को लगाएंगे, तो फिर हम भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। तो फिर 18वें श्लोक में बोलते हैं, तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है, आपने ये तो बताया कि हम भगवान की तरफ अग्रसर होने चाहिए और उससे हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ लक्षण बता सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जो भगवान की तरफ अग्रसर है, जिसने भगवान की शरण ली है। तो 18वें श्लोक में उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। तो इधर बोल रहे हैं कि पंडित जो है, जो इस ज्ञान से युक्त है, जो भगवान की तरफ ही अपना पूरा देह लगाया हुआ है, उसके क्या लक्षण है, तो उसकी दृष्टि समा रहती है। तो विद्या विनय संपन्न, वो विद्या से विनय से संपन्न है, ज्ञान से और नम्रता से, विनय से और ज्ञान से जो संपन्न है वो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण, कोई गवि, कोई गाय, हस्तिनी, कोई हाथी और कोई शुनी, कोई कुत्ता, किसी को भी देखता है वो क्या देखता है, समदर्शिना, वो एक रूप से देखता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को नहीं देख रहा है, वो शरीर के अंतर्गत जो आत्मा का जो प्रवास है उसके ऊपर धारणा कर रहा है। तो जो भगवान की तरफ अग्रसर है उसका ये आचरण रहता है, ये उसके लक्षण रहते हैं, तो उसका यहाँ पे बताया गया है। तो इस पे काफ़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं कि कैसे, अगर कोई बोलेगा कि, तो आचार्य लोग बता रहे हैं कि जैसे ब्राह्मणा है, गाय है वो सत्वगुण में है, हाथी जो है वो रजोगुण में है, जो कुत्ता है या जो कुत्तों को मतलब मांस खाते हैं वो तमोगुण में है, पर जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के परे है वो इन गुणों से प्रभावित नहीं होता है, पर वो सब में आत्मा का वास देखता है, तो वो तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता है, ये इसमें हम एक समझ सकते हैं। तो फिर 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति ब्रह्म, जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, भगवान की जो व्यापकता है सब सब जगह, उस पे वो स्थिर रहता है, सब जगह भगवान को देख पाता है। उसका मन स्थिर रहता है, वो विचलित नहीं होता है, और उसने जन्म और मृत्यु की जो इच्छाएं हैं, तकलीफें हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और इस प्रकार से वो ब्रह्म ज्योति पे स्थित रहता है। तो ऐसा उसका, तभी उसका मन विचलित नहीं होता है अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग समस्याओं से। फिर 20 और 21वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के क्या लक्षण है, आप कैसे समझ सकते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि न प्राशयेत प्रियम प्राप्यम, न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। उसको कुछ प्रिय मिलता है जो उसको बहुत पसंद है या जिससे उसको आसक्ति थी पहले, उसको देख के बहुत उत्सुक नहीं हो जाता, बहुत ये हल्ला गुल्ला नहीं करने लगता कि अरे मेरे को ये मिल गया, मेरे को मिल गया ना। चा उद्वेजत प्राप्य चा प्रियम, लेकिन कुछ ऐसी चीज मिलती है जो उसको पसंद नहीं है, उससे भी वो उद्वेग नहीं होता है, मतलब विचलित नहीं होता है या ऐसा भाव नहीं रखता है, स्थिर बुद्धिर। और वो अपनी बुद्धि में, अपनी जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें स्थिर रहता है, असमूढ़ो। और वो परिस्थितियों से, परेशानियों से विस्मित नहीं होता है। और ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, और वो हमेशा भगवान के ज्ञान में स्थित है, उसको पता है भगवान ही सबके नियंत्रक हैं, भगवान ही सबके स्तोत्र हैं। और ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति में स्थित है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि असक्त आत्मा, एक लक्षण दे रहे हैं कि वो आसक्त नहीं होता है इस जगत में इंद्र तृप्ति से। और अक्षय सुखम, जो सुख है उसको अंदर ही महसूस करता है, बाहर सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, अंदर ही सुख की अनुभूति करता है। और फिर उस वजह से वो क्या होता है, परमात्मा जो सब जीवों के साथ निवास कर रहे हैं उनके साथ अपना संबंध जोड़ पाता है, उनको देख पाता है, उनके साथ संबंध जोड़ पाता है। तो ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि विरक्त रहना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए भौतिक चीज़ों से, भौतिक खुशियों से, और अंदर की तरफ अपने को ध्यान लगाना चाहिए। तो वो कब संभव है, वो जब भी संभव है जब हम जाने कि जगत में जो भी कुछ है वो नश्वर है, वो क्षण भंगुर है। जब हम उसके असली तत्व को जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें आनंद ढूंढना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस जगत में इंद्र तृप्ति के ऊपर अग्रसर होंगे तो आपको इसमें परेशानी ही होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नाते शूरमते बुधः। तो ये ही संस्पर्श जाप होगा। जब आप संस्पर्श, जो इंद्र तृप्ति की जो सुविधा है उसके साथ स्पर्श करते हैं, दुख योनय एवते, वो जस्ट दुख ही देता है और कुछ नहीं देता है। आदि अंतवंत कौनते है, क्यों? क्योंकि इन जो सुख है भौतिक जगत में उसका आदि है, उसकी शुरुआत होती है और अंत भी होता है। न तेषु रमते बुधः, जो बुद्ध है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न तेषु रमते, वो इसमें रमण नहीं करता है, इसमें सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये तो श्रम भंगुर है, ये अभी मिलेगा, अगले समय वही चीज से हमको तकलीफ होगी। अभी आनंद दे रहा है, अगले क्षण वही चीज हमको निरानंद या दुख का कारण बनेगा। तो ये जब समझेंगे तब हम बाहर सुख ढूंढने के बजाय अंदर वो सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति का प्रयास करेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं कि हमने सुन लिया, कितनी बार सुना है कि हम आत्मा हैं, हमें बाहर प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर भी ये बोलते हैं ना, मन तो मानता ही नहीं है, वो तो प्रयास करता ही रहता है कि मैं ठीक है आज नहीं मिला इस, तो ये ट्राई करता हूँ, इसमें शायद सुख मिल जाएगा, तो वो चलता ही रहता है मन का प्रयास। जब तक हम पूरी तरह कलमश रहित नहीं रहेंगे, वो मन सोचता ही रहेगा कि इसमें आनंद लूँ, नहीं तो इस, चलो इसमें नहीं मिला तो ठीक है इसमें मिल सकता है शायद, तो वो प्रयास करता रहेगा। तो इसके लिए 23वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मन तो विचलित रहेगा, आपको उसको संयम करने का प्रयास करता रहना पड़ेगा, या कुछ बोलेगा तो उसको टॉलरेट कीजिए, उसको उससे विचलित नहीं हुई है। तो ऐसा 23वें श्लोक में बोल रहे हैं, शांक्नोत्येव प्राक्शरीरा विमोक्षनान् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। तो शाक्नोति एव य शोडुम, मतलब कि हमें शोडुम, शोडुम मतलब टॉलरेट कीजिए, मतलब अगर विचलित कर रहा है मन तो उससे विचलित होना चाहिए, समझिए कि ये मन का ही जस्ट खेल है। और उससे क्या कीजिए फिर, प्राक शरीर विमोक्षण, जब तक ये शरीर है ये चलता ही रहेगा, तो जब तक शरीर है आपको वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। काम क्रोध उद्भवम वेगम, और ये किससे उत्पन्न होता है, काम से और क्रोध से। हमें कई बार इच्छाएं होती हैं इसमें आनंद लूं, या क्रोध उत्पन्न होता है उसके वजह से। तो स युक्ता स सयुक्ता स सुखी न रहा, तो जो इस तरह कार्य करता है वो इस जगत में सुखी से रह सकता है, अदरवाइज नहीं तो उसको दुख की अनुभूति ही करनी पड़ती है, बार बार ये कभी वो ऐसा चलता रहेगा। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला कि श्रम भंगुर है, तो श्रम भंगुर जानते हुए भी मन तो वो प्रयास करता रहेगा, तो उसको टॉलरेट कीजिए। फिर वो समझने के बाद भी हम कब तक, कोई बोलेगा एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार ही कर लिया, फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो मैं कितने तक टॉलरेट करता रहूंगा। मन कभी ना कभी तो बोलेगा नहीं अभी इतनी बार किया है तो अभी एक बार ही तो मान लेना चाहिए। तो इसलिए 24वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जिसको एक जैसे हम वृंदावन गए थे अभी, तो एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी, हम बोले कि कितने सुंदर फूल हैं, कितनी महक है, तो वो बोल रहे थे प्रभु जी महक है लेकिन इस कुछ वर्ष पूर्व ना, 5-10 वर्ष पूर्व महक ना मंदिर के बाहर तक जाती थी, तो अभी जो महक आ रही है वो तो बहुत कम है। तो वो बोल रहे, तो उनको उसका एक्सपीरियंस है वो आनंद का, तो उनको लग रहा था कि ये तो अभी फूल बहुत खराब है, मतलब कोई महक है ही नहीं उसमें, कुछ अच्छी सुगंध है ही नहीं, लेकिन हम बॉम्बे से या कहीं से आते हैं तो उसमें तो फूल में सुगंध ही नहीं रहती है, तो हमें उसमें लग रहा था अरे कितने अच्छे फूल हैं, कितना अच्छा महक आ रहा है, एटलीस्ट ऑल्टर के बाहर तक तो महक आ रहा है। तो वो बोल रहे थे प्रभु जी ये तो अच्छे नहीं है, पहले बहुत अच्छे होते थे, वो उसका महक मंदिर के बाहर तक जाता था, गेट के बाहर तक। तो जिसको एक हायर टेस्ट है, मतलब उसने अनुभव किया है कि इसका और भी गहरा रस है, तो उसको फिर टॉलरेट करना आसान हो जाता है, उसको पता है कि मेरे को क्या मिलने वाला है या क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो फिर यहाँ पे 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो आत्मसुख में दृढ़ रहता है और अंतर आराम, मतलब अंदर ही अपने जो प्रयास को अंदर की तरफ रखता है, और अंतर ज्योति जो अपनी आँखों को, जो अपनी इंद्रियों को अंतर में स्थित रखता है, वो असली में योगी है, ऐसा भगवान कृष्ण 24वें श्लोक में बोल रहे हैं। और वही आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। तो फिर ऐसा बताने के बाद 25वें श्लोक में बताते हैं कि क्या साधना होनी चाहिए अगर हम ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रसया शीन कल्मषा छिन्न द्वैध यतात्मान सर्वभूता हितेरतः। तो शीन कल्मषा मतलब कल्मश से रहित रहना चाहिए तभी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। फिर छिन्न द्वैध द्वंद से मुक्त रहना चाहिए और उसके संशय से मुक्त रहना चाहिए, और यथा आत्मना और उसका मन अंदर रमण करना चाहिए, बाहर रमण नहीं करना चाहिए, इंद्रियों में नहीं रमण करना चाहिए, अंदर जो आत्म साक्षात की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ रमण करना चाहिए। सर्वभूत हिते रतः, और वो सब प्राणियों के लिए, सब भूतों के भले के लिए कार्य करता है, हित के लिए कार्य करता है। तब जब ये जीवन रहेगा, ऐसा हमारा जीवन रहेगा, तो मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना होनी चाहिए मुक्ति के लिए, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अभी तक लक्षण बताए हैं पिछले श्लोकों में, वो बहुत ही आपको बहुत ही कम दिखेंगे जगत में, ऐसे लोग जो ये लक्षण को प्रस्तुत करेंगे कम दिखेंगे, और उसको प्रयास करने पर भी जो पा सकेंगे वो भी बहुत कम दिखेंगे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी आप निराश मत होइए, आप प्रयास करते रहिए। तो ऐसा वो 26वें श्लोक में बोल रहे हैं, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां येत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो भगवान बोल रहे हैं कि काम क्रोध विमुक्त आत्मा यति नाम यत चेतसाम, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं और जल्दी हो जाएंगे। तो आप इससे वो नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, अरे तो बहुत ही, आप तो बहुत मुश्किल मार्ग बता रहे हैं जो बड़े बड़े साधु संत भी नहीं कर पाए, मैं कैसे करूंगा, अर्जुन सोच सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं आप प्रयास करेंगे तो जल्दी ही आप जो क्रोध है, जो भौतिक इच्छा है, काम क्रोध विमुक्तानाम और यतचेतसाम, अपने मन के ऊपर संयम लाना, ये आप कर सकते हैं। कब है पॉसिबल? जब आप सिंसियरली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन विथ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रियलाइज, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, परायणशील रहने चाहिए, मतलब प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ स्थिति, तो भगवान कृपा करके आपको वो स्थिति प्रदान कर देंगे। फिर 27वें और 28वें श्लोक में एक एक जैसे बोलते हैं ना, कुछ मूवी दिखानी हो उससे पहले ट्रेलर दिखा देते हैं, तो अगले अध्याय में वो पूरा अष्टांग योगी का बारे में बताएंगे। तो 27वें और 28वें श्लोक में एक उसके बारे में ट्रेलर दे रहे हैं कि वो अष्टांग योगी कैसे अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ, अंतरात्मा कैसे प्रस्तुत करता है। तो उसके बारे में यहाँ पे 27वें और 28वें श्लोक में दे रहा है, बोला है कि वो भार की तरफ नहीं अग्रसर रहता है, इंद्रिय भोग वस्तु की तरफ नहीं देखता है, और अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को अपनी आईब्रोज के बीच में रखता है, और ब्रीदिंग को संयम में रखता है, अपने मन और इंद्रियों और बुद्धि को इस तरह संयम में रखता है, और मुक्ति की तरफ अग्रसर रहता है, ऐसा बताया है, और इस तरह वो संयम पा सकता है। तो ये अष्टांग योगा के बारे में बता रहे हैं, कैसे कुछ योगा पोस्चर्स प्राणायाम के अंतर्गत कैसे हम संयम ला सकते हैं मन में। तो इससे अगला जो अध्याय है वो चालू होता है। तो आखिरी श्लोक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतना सब सुनने के बाद वो बोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई आसान तरीका है क्या? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि दूसरे जो जो दो श्लोक में बोला है कि अष्टांग योग के माध्यम से स्थिर बैठे रहो, आँखों को और मन को केंद्र करो, तो उससे अच्छा है आप भक्ति के मार्ग से अगर मेरे पे अर्पण करेंगे, मेरे को सर्वेश्वर मानेंगे, मेरे को भोक्ता मानेंगे, तो वो अच्छा मार्ग है। तो 29वें श्लोक में बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इसमें बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी इसको बोलते थे पीस फॉर्मूला, मतलब कैसे हम शांतिम ऋच्छति, शांतिम कैसे पा सकते हैं, अगर हम भगवान को जानेंगे भक्ति के मार्ग से, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही भोक्ता हूँ सारे यज्ञों का और सारे यज्ञों में मैं ही भोक्ता हूँ और तपस्या का भी सभी मैं ही भोक्ता हूँ। तो इसका अंतर्गत आचार्यगण बता रहे हैं कि यज्ञ किसके बारे में बोल रहे हैं, कर्मी जो कर्म कर्मकांड है, जो कर्म योग योगी रहते हैं वो यज्ञ करते हैं, तो उनके सारे कार्यकलाप मेरी तरफ अग्रसर हैं। और तपस्या कौन करते हैं, ज्ञानी, तो उनके भी सारे कार्यकलाप मेरी तरफ अग्रसर हैं। सर्वलोक महेश्वरम, और मैं ही सारे लोगों का महेश्वर हूँ, ईश हूँ, सभी मेरे से आए हैं। इसका मतलब सारे जो जग में अलग अलग प्लैनेट्स हैं और देवता हैं तो वो भी मेरे से आए हैं। तो इसका मतलब जो अष्टांग योगी हैं, जो अलग अलग अपनी अष्टांग योगा के प्रयास से अपनी जो एकाग्रता को धीरे 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 बढ़ाते हैं, वो भी मेरी तरफ ही अग्रसर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं ही सबका सुहृद हूँ, सभी भूतों का, सभी जीवों का सबसे भूत मैं हूँ, वेल विशर। तो अगर ऐसा कोई जानेगा, ज्ञात्वा माम शांतिम रच्छति, वही असली में शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, द ग्रेटेस्ट पीस फॉर्मूला इज सिंपली दिस, लॉर्ड कृष्णा इज द बेनिफिशरी इन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई भी हम कार्यकलाप करें तो उसका बेनिफिशरी कौन है, उसका उसका फल किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है, वो भगवान कृष्ण को ही जाता है। अगर ये हम समझ लेंगे, इसके अनुसार कार्य करेंगे, तो हम शांत या आनंद, शांत शांति आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा फिर प्रभुपाद जी आखिरी में अगर आप देखेंगे तो जो तात्पर्य है उसमें पूरे जो पांचवें अध्याय को समराइज कर देते हैं, जो सारे श्लोक हैं कि ये के बाद ये, ये के बाद ये, ऐसा करके पूरा उसको अंत में बता देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद और खासकर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योगा को आप अलग अलग मत समझिए, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही है और आपकी स्थिति में कर्म योगा के द्वारा आप प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि आपके वैसे तो अर्जुन के अंदर कुछ कलमश नहीं है, पर आप कार्यशील रहेंगे तो उससे अंदर जो कलमश हैं वो धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे। तो वो मार्ग यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह ये पांचवा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। Thank you.